Good evening, listeners, and welcome to today's edition of Market Mantra, the program in which we give you a comprehensive update on the economic and business news of the day. And of course, today being Sunday, we'll also be taking calls from our listeners on mutual funds and related issues. To connect with us, you may call us on our landline numbers 2331-4444, 2342-1050 and 2331-0464. Along with my co-anchor Subodh Mishra, I am Sarabjit Kaur.
धन्यवाद सरबजीत और नमस्कार श्रोताओं. कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है. आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे. सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444, 2342-1050 और 2331-0464. दिल्ली से बाहर के श्रोता और मोबाइल फोन से कॉल करने वाले लोग पहले STD कोड 011 डायल करें. आज की खबरों पर चर्चा कर रहे हैं और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आशुतोष गुप्ता. आशुतोष, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है.
जी धन्यवाद.
पहले हेडलाइंस के साथ सरबजीत कौर.
Yes, Subodh, right away. India's forex market doubles in last 4 years from $32 billion to $60 billion, says RBI Governor Sanjay Malhotra. Foreign investors infused nearly 8,500 crore rupees in the country's equity markets last week, and domestic markets to focus on next set of quarterly earnings, tariff announcements and FII data for Q's next week.
Bharat ka videshi mudra bazar pichle 4 saalon mein lagbhag doguna hokar 32 arab se 60 अरब डॉलर्स पर पहुंचा. कहा रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने विदेशी निवेशकों ने पिछले हफ्ते देश के शेयर बाजारों में लगभग 8,500 करोड़ रुपए का निवेश किया और अगले हफ्ते देश के बाजारों का फोकस रहेगा कंपनियों की तिमाही आमदनी, आयात शुल्क से जुड़ी घोषणाओं और विदेशी निवेश के आंकड़ों पर. आइए पहली खबर पर नजर डालते हैं. रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि देश का विदेशी मुद्रा बाजार पिछले 4 वर्षों में लगभग 2 गुना हो गया है. उन्होंने बाली में आयोजित एक सम्मेलन में यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत के वित्तीय बाजार में अधिक तेजी आई है और लचीलापन भी देखा जा रहा है. यह वर्ष 2020 के 32 अरब डॉलर्स की तुलना में 2024 में 60 अरब डॉलर्स तक पहुंच गया था. अब हमारे साथ पहले कॉलर जुड़ गए हैं सहारनपुर से विवेक. स्वागत है विवेक, अपना सवाल पूछें.
मार्केट मंत्रा टीम, आज के एक्सपर्ट को नमस्कार.
नमस्कार.
मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा एक FD है जो 1 महीने मेरी मैच्योर हुई है और मैं इस FD के अमाउंट को सर कम अवधि के निवेश जैसे 3 महीने 6 महीने या 1 साल के लिए निवेश करना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे किस प्रकार के फंड का सिलेक्शन करना चाहिए और जो आप फंड बताएं उसे मुझे लमसम करना चाहिए या सिप के माध्यम से करना चाहिए और सर मेरा ये FD का ज्यादा है या मैं ज्यादा अमाउंट निवेश करना चाहता हूँ.
क्या आप तो पहली बार निवेश कर रहे हैं?
नहीं सर, मैं म्यूचुअल फंड में 8 ईयर से इन्वेस्टेड हूँ और मैं सिप के माध्यम से डायरेक्ट इक्विटी में जुड़ा हुआ हूँ मगर मैंने अभी डेप्थ फंड में नहीं निवेश किया है. तो मैं डेप्थ के लिए जानकारी चाहता हूँ कि मुझे अलग जो अमाउंट है अगर बड़ा अमाउंट हो तो उसको अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में बांट के निवेश करना चाहिए किस प्रकार, उसके लिए सलाह चाहिए सर.
और कितने समय के लिए करना चाहते हैं?
मैं सर उसके लिए 3 महीने 6 महीने या 1 साल.
जी तो 3 महीने से लेके 1 साल तक की अवधि, जैसा आपने ठीक अंदाज लगाया, काफी छोटी अवधि और इक्विटी से आपको बिल्कुल दूर रहना चाहिए. अपनी इस पूंजी को इक्विटी बाजार से आप बिल्कुल दूर रखें. डेट फंड्स ही आपके लिए एक बेहतर और सही निवेश होगा. डेट फंड्स में भी ऐसे फंड जो बहुत छोटी अवधि के बॉन्ड्स में निवेश करते हैं आपका पैसा ज्यादा अच्छे से सुरक्षित रखते हैं, जैसे कि अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स या मनी मार्केट फंड्स, 3 महीने के लिए तो लिक्विड फंड्स, इस टाइप के निवेश आपको करने चाहिए और ये पैसा आप लमसम में लगा सकते हैं। इसमें कोई SIP करके या स्प्रेड करके कुछ महीनों पर पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप लमसम में पैसा लगाएं, HDFC लिक्विड फंड, एक्सिस लिक्विड फंड, ICICI प्रू लिक्विड फंड, इस टाइप के फंड्स में से आप किसी भी दो फंड का चुनाव कर उनमें अपना पैसा निवेश कर सकते हैं।
नितिन जॉइन्स अस फ्रॉम दिल्ली। नितिन जी अपना सवाल पूछिए।
नमस्कार जी।
नमस्कार।
हेलो।
हाँ जी नितिन जी अपना सवाल पूछिए।
हाँ जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ सर से कि हम बैंक के थ्रू अपना पैसा जमा करते हैं FD के, तो बैंक में ये भी हमें कभी कोई बैंक बोलता है, मैनेजर बोलता है कि आपको म्यूचुअल फंड में पैसा भी लगाना चाहिए, और अदर बैंक वाला एक मैनेजर बोलता है नहीं, इसमें आपको चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। दो बैंकों की अलग क्यों इनका जो धारणा है समझाने की? हम FD में हमने तो पैसा लगा दिया, अगर हम म्यूचुअल फंड में जाना चाहें तो सरल आसान तरीका क्या है? एक साल के लिए FD के लिए लगाते हैं, तो एक साल के लिए म्यूचुअल फंड में हम लगाए लमसम एक साथ लगा दें 2-4 लाख।
देखिए, धारणा का तो ऐसा है कि हर किसी की अपनी ओपिनियन होती है अलग अलग चीज़ों पे, किसी भी दो लोगों की किसी भी एक चीज़ पर सहमति हो जरूरत ये ज़रूरी नहीं है। ये निर्णय आपको लेना और थोड़ा सोच समझ कर लेना है। म्यूचुअल फंड्स एक आम तौर पर एक आम निवेशक के लिए, रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा विकल्प है इन्वेस्टमेंट का, तो मैं एडवोकेट हूँ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट का अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। छोटे समय के लिए भी अलग अलग टाइप के फंड होते हैं, लेकिन आप FD से काफ़ी चांस है आप बेहतर रिटर्न कमा सकते हैं, एक वेल रेगुलेटेड प्रोडक्ट है। तो मैं वो क्यों मना कर रहे हैं आप उनसे ही पूछिए कि उनकी क्या ऐसी धारणा है जिसकी वजह से वो आपको FD की बजाय म्यूचुअल फंड में निवेश करने से रोकना चाहते हैं। तो मैं तो आपको ज़रूर सलाह दूंगा कि आप निवेश करिए अपने रिस्क एपेटाइट और अपनी इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से सही फंड का चुनाव कर। जहाँ तक बात है कि आप किस टाइप के फंड्स कैसे आप इन्वेस्ट करें, तो देखिए आप एक शुरुआती निवेशक को जिसको बहुत जानकारी नहीं है, आप अपनी बैंक ब्रांच के थ्रू भी निवेश कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको गाइड करेंगे आपसे सारे फॉर्म फिल करवाकर, और आपको पहला निवेश जब आपका शुरू हो जाता है थोड़ी फेमिलियरिटी बनती है, उसके बाद आप चीज़ों को अपने हाथ में ले सकते हैं। बस आप एक बात का ध्यान रखिए, काफ़ी बार ऐसा होता है कि कहीं पे ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये आपको म्यूचुअल फंड के नाम पर यूलिप बेच दी जाती है, तो आपको उससे बच के रहना है। आपको इंश्योर करना है कि जो भी आपको फंड दिया जा रहा है उसमें कोई इंश्योरेंस का कंपोनेंट ना हो, जहाँ इंश्योरेंस का कंपोनेंट आ जाए वहाँ आप समझ जाइए कि म्यूचुअल फंड नहीं, आपको यूलिप बेची जा रही है, उससे आप बचें और म्यूचुअल फंड में निवेश करें। और दूसरी एक अहम बात यह कि जब आप फेमिलियर नहीं है और आप इस पर अपना खुद का कॉन्फिडेंस बनाना चाह रहे हैं या अपना अपनी खुद की ओपिनियन बनाना चाह रहे हैं, आप छोटे अमाउंट से शुरू करें। आप एक साथ 5-10 लाख इन्वेस्ट करने के बारे में ना सोचें। आप म्यूचुअल फंड में एक बहुत ही छोटे 500 रुपये प्रति माह से भी शुरुआत कर सकते हैं, 1000 रुपये प्रति माह से भी शुरुआत कर सकते हैं। तो आप एक बहुत छोटे अमाउंट का एक SIP बनाइए, उसको 6-8 महीने 10 महीने आप चलने दीजिए, आपको फेमिलियरिटी आएगी कि ये किस तरह काम करते हैं, किस तरह निवेश होता है, किस तरह पैसा निकाला जाता है। जब आपका कॉन्फिडेंस इसमें बढ़े, आपकी कन्विक्शन बढ़े, तब एक बड़े निवेश के बारे में सोचें।
That's a great piece of advice, Ashutosh ji. You know, you're advising to take small steps towards this big investment.
Ji.
अगले कॉलर के पास चलते हैं, योगेश शर्मा हमारे साथ हैं। योगेश जी स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
आप सभी को नमस्कार, और मैं आशुतोष जी की बहुत तारीफ करना चाहूंगा कि आपके जो जवाब होते हैं बहुत ही सरल और आसान भाषा में समझ में आ जाते हैं। सर मेरा सवाल यह है कि हम क्वार्टरली और 6 महीने में एक बार जरूर मार्केट मंत्रा में धीरेन्द्र सर से आपसे अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू करवाते हैं कि क्या क्या होल्डिंग्स म्यूचुअल फंड में है। तो जो अभी करंटली मेंबर्स म्यूचुअल फंड है वो 7 म्यूचुअल फंड हैं, मैं आपको उनके नाम बताता हूँ, आपको बताना है कि इसमें क्या कोई सब ठीक है, फंड के कुछ चेंजेस की जरूरत है। तो पहला फंड जो मेरे पास में इमरजेंसी फंड के लिए है, एक लिक्विड फंड है जो ICICI का लिक्विड फंड है। दूसरा शॉर्ट टर्म डेट फंड है ICICI का जो डेट एलोकेशन के लिए है। तीसरे हमारे पास में 4 SIP वाले फंड है, ICICI लार्ज एंड मिड कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप और पारस्परिक ALSS फंड। और 5वां एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो का एक एलोकेशन का, 7वां एक सैटेलाइट एलोकेशन का फंड है जो कि अभी तक हमने डिसाइड नहीं कर पाए ढंग से कि उसको कौन सा लेना है। सर इसमें सवाल हमारा ये भी है कि जो अभी हम लोग न्यू टैक्स रिजीम में है, तो क्या ये जो पराग पारे का ALSS फंड है इसको हम एज ए फ्लेक्सी कैप ही कंटिन्यू रखें क्योंकि इसमें ठीक ठाक रिटर्न और सब कुछ ठीक आ रहा है, या फिर इसको स्विच करना जरूरी है?
नहीं देखिए, बिल्कुल स्विच करना जरूरी नहीं है, आप इस निवेश को जारी रख सकते हैं जब तक आप देखिए, इसमें फर्क एक फ्लेक्सी कैप फंड से यही है कि इसमें 3 साल का लॉक इन आता है और आपको अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में कंटिन्यू करते हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। अदरवाइज अगर आपको बिना टैक्स बेनिफिट के भी ये फंड सक्षम है, बल्कि जो बहुत ही श्योर है कि उनको इस पैसे की जरूरत नहीं पड़ने वाली और वो 3 साल के लॉक इन से घबराते नहीं है, तो एक्चुअली में ELSS फंड मे नॉट बी अ बैड आइडिया, क्योंकि इनमें देखिए पैसा कम आता है, इनफ्लो कम आता है, फंड मैनेजर को एक जो अमाउंट डिप्लॉय करना होता है, इन फंड्स का साइज जनरली मेन स्ट्रीम फ्लेक्सी कैप फंड से थोड़ा छोटा रहता है, तो उस वजह से इनमें फंड मैनेजर अपनी थॉट्स, अपनी स्ट्रेटजीज मेरे ओपिनियन में ज़्यादा कारगर तरीके से डिप्लॉय कर पाते हैं। इनमें से आउटफ्लो बहुत मैसिव तरीके से जनरली नहीं होता है किसी भी मार्केट कंडीशन में, क्योंकि पैसा कुछ ना कुछ पैसा हमेशा ही 3 साल की लॉक इन अवधि में रहता है, तो इनमें से बहुत मैसिव आउटफ्लो होने का चांस एक वन शॉट में कम होता है। तो ओवरऑल इनको मैनेज कर पाना फंड मैनेजर के लिए या अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज को डिप्लॉय कर पाना, मेरा ख्याल वो ज़्यादा कारगर तरीके से कर पाते हैं। हाँ, इसमें लॉक इन जरूर रहता है, लेकिन अगर आपको उससे परेशानी नहीं है तो मेरे हिसाब से ELSS फंड में आप बिल्कुल बने रह सकते हैं।
टिंकू राय जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ बेगूसराय बिहार से। टिंकू जी अपना सवाल पूछिए।
मैडम जी, मेरा 2 सवाल है।
हाँ जी बताइए।
41 का उम्र है, ठीक है
जी,
और मैं एक म्यूचुअल फंड बैंक द्वारा कराना चाहते हूँ, एक मैं वरिष्ठ नागरिक जो PPF अकाउंट है उसमें कराना चाहते हैं, किस तरह करना चाहिए थोड़ा जानकारी दीजिएगा।
जी, मैं जहाँ तक मैं अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ, आप एक शुरुआती निवेशक हैं, आप FD में अभी तक इन्वेस्टेड हैं, आप म्यूचुअल फंड की तरफ जाना चाहते हैं, तो आप अपने बैंक के थ्रू इन्वेस्ट करिए। जैसा मैं अभी पहले कह रहा था, आप इस बात का ध्यान रखिए आपको म्यूचुअल फंड कहकर यूलिप ना बेची जाए। आप बैंक में जाकर अगर आपको निवेश करना है, आप उन्हें बोलिए कि मुझे ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड में एक SIP शुरू करना है, और अगर आप 2 फंड लेना चाहते हैं, कोटक इक्विटी हाइब्रिड, मैं 2 फंड के नाम दोबारा बता रहा हूँ एक शुरुआती निवेशक के लिए, ICICI प्रू इक्विटी एंड डेट फंड, कोटक इक्विटी हाइब्रिड फंड। आपको जितना भी मासिक पैसा लगाना है, आपके पास एक पूंजी जमा पूंजी है, उसको भी ध्यान में रखिए कि एक साथ मत लगाएं, मासिक तरीके से स्प्रेड करके लगाएं। कुछ जमा पूंजी है उसको भी अगले 6-8-10 महीने में बराबर बराबर हिस्सों में बांटकर लगाएं, एक साथ बिल्कुल ना लगाएं। और आप बैंक में जाकर कहिए कि अपने रिलेशनशिप मैनेजर को मुझे इन्हीं 2 फंड में लगाना है, आप मुझे और कुछ ना बताएं, बस इन 2 फंड में मेरा SIP शुरू करा दीजिए। तो आप इसके साथ शुरू करिए, और ज़रूरी है कि मार्केट के उतार चढ़ाव से आप परेशान ना हो, क्योंकि मार्केट में अभी काफ़ी उठापटक का माहौल है। आपको बने रहना है कम से कम 3 से 4 साल तक, अपना ये SIP कंटिन्यू रखिए बिना ये सोचे कि मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। लंबे समय तक आप बने रहेंगे तो मुझे काफ़ी आशा है कि आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा।
जी, अगले कॉलर है पुणे से आलोक, स्वागत है आलोक, अपना सवाल पूछें।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। सर मेरे 3 सवाल है। पहला सवाल ये है कि सर अभी इस वक्त मेरे पास में 5 लाख रुपए है लमसम, तो उसको मुझे इन्वेस्ट करना है, तो कोई अच्छे फंड का नाम बता दीजिए जहाँ पे मैं उसको लगा सकूँ 4-5 साल के लिए 5 लाख रुपए। दूसरा सवाल था सर कि ये डायरेक्ट मैं म्यूचुअल फंड की साइट में जाके इन्वेस्ट करूँ कि किसी ब्रोकर के थ्रू करूँ? ब्रोकर के थ्रू करने से कॉस्ट में कुछ मतलब बढ़ता है क्या, इसमें NAV का रेट बढ़ जाता है क्या, या म्यूचुअल फंड की वेबसाइट में जाकर डायरेक्ट इन्वेस्ट करना ज्यादा अच्छा रहेगा? ये थोड़ा सा मुझे बताइए। 5 लाख रुपए का इन्वेस्ट करना है 5 साल के लिए। थैंक यू सर।
जी, 5 लाख आपको लगाने हैं कि और 4-5 साल के लगाने हैं? मेरा ख्याल जो अभी मैं फंड के नाम पिछले श्रोता को बता रहा था, आप उन्हीं 2 से शुरुआत करिए, ICICI प्रू इक्विटी एंड डेट फंड, कोटक हाइब्रिड इक्विटी हाइब्रिड। और थोड़ा मैं और अगर इनके बारे में बताऊं, ये ऐसे फंड है कि आपका करीब 70-75% ये इक्विटी मार्केट में निवेश करते हैं, बचा हुआ पैसा डेट मार्केट्स में लगाते हैं जो उतनी वॉलेटाइल नहीं होती, उनमें उतना उतार चढ़ाव दिन प्रतिदिन देखा नहीं जाता। तो ये फंड आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छी ग्रोथ देने में सक्षम होते हैं, लेकिन जब भी मार्केट गिरती है ये मार्केट से थोड़ा हमेशा कम गिरते हैं, तो उस वजह से एक आपको साइकोलॉजिकल एडवांटेज रहती है, मार्केट के बनिस्बत आपका पैसा हमेशा ही थोड़ा कम गिरता है, उससे आपको मार्केट में बने रहने में, खासकर शुरुआती निवेशक या जो थोड़े रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स होते हैं उनको ये साइकोलॉजिकल एक एडवांटेज प्रोवाइड करता है, इसलिए इन फंड को शुरुआती निवेशकों के लिए एक बढ़िया विकल्प माना जाता है। दूसरा आपका सवाल, डायरेक्ट इन्वेस्ट करें या ब्रोकर के थ्रू? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर आप ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे तो आपको खर्चा थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि जाहिर है उसमें ब्रोकर का कमीशन इंक्लूडेड है, और वो कमीशन हर साल करीबन 75 पैसे से 1% तक का वो जो उनका कमीशन होता है वो उसमें बिल्ट इन है। तो अगर आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप आशा करिए कि हर साल आप 0.25% रिटर्न एक्स्ट्रा कमाएंगे, क्योंकि वो जो उतना परसेंटेज है वो आपके ब्रोकर का कमीशन हर साल उसको दिया जाएगा। और लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि जब ये 0.75 to 1% का जब आप कंपाउंडिंग लगाते हैं, अगर आप 12-15 साल तक निवेशित रहते हैं, तो वो कंपाउंडिंग करके आपकी ओवरऑल रिटर्न पर आप जो पूंजी आप जमा कर पाते हैं उसमें काफ़ी फर्क इसमें आ जाता है। तो अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करने में सक्षम है किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू या म्यूचुअल फंड कंपनीज की वेबसाइट पर जाकर डायरेक्ट आप इन्वेस्ट करने में सक्षम है, आपको कॉन्फिडेंस है, आप अपने आप एक डू इट योरसेल्फ इन्वेस्टर जैसे बोला जाता है, अगर आप वो हैं तो आप ज़रूर डायरेक्ट इन्वेस्ट करिए। लेकिन अगर आप फेमिलियर नहीं हैं और फेमिलियरिटी के अभाव में आप वो पहला कदम उठा नहीं पा रहे हैं, और आप मतलब सिर्फ सोच रहे हैं कि मैं इन्वेस्ट करूंगा, साल छः महीने साल निकलता चला जा रहा है और आप पहला कदम नहीं उठा पा रहे हैं जानकारी के अभाव में, तो बेहतर है कि आप चाहे ब्रोकर के थ्रू शुरुआत करिए, जब आप थोड़ा और कॉन्फिडेंस गेन करें तब अपने इन्वेस्टमेंट्स को डायरेक्ट में मूव करें। तो दोनों ही विकल्प आप चूज कर सकते हैं।
So sure, indeed, if there is lack of confidence at the initial stages, some amount of hand-holding is certainly good.
लेकिन एक और बात है आशुतोष इसमें कि जब हम नए निवेशक जब जाते हैं किसी एजेंट के पास, तो एजेंट हमेशा वो अपनी पसंद के फंड्स उनको बताते हैं। तो इनसे ये अनुरोध है कि जो फंड्स अभी आपने नाम लिए हैं, जो बताए हैं, ये उन पर अड़े रहें कि मुझे इसी में निवेश करना है।
जी ये काफ़ी अहम सवाल है। देखिए कि जब भी आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी अच्छे भी हैं जो आपको सही तरीके से गाइड करते हैं, लेकिन ये आपको
उसका अपना इंटरेस्ट होता है।
हाँ, लेकिन कोई कोई अपने इंटरेस्ट को ऊपर रखते हैं, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को नीचे रखते हैं। तो देखिए, थोड़ा आप बिल्कुल ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, आपको अपना सोचकर समझकर, यू नो, आप कोई भी और स्फेयर में जाते हैं, आप बड़ी जानकारी के साथ आप गाड़ी खरीदने जाते हैं, बहुत जांच पड़ताल करते हैं, रिसर्च करते हैं, तब आप खरीदते हैं। अनफॉर्चुनेटली निवेश का जब टाइम आता है तब बहुत सारे इन्वेस्टर उतना टाइम लगाते नहीं हैं। तो थोड़ा सोच समझिए चीज़ों को, क्वेश्चन पूछिए, भांपिए कि कोई आपको कुछ रिकमेंड कर रहा है तो उसमें उसका क्या इंटरेस्ट हो सकता है, क्या वो आपके लिए उचित है, और फिर सोच समझ कर निवेश करिए। तो थोड़ा उसमें टाइम ज़रूर दीजिए, और मैं बार बार कहता हूँ कि यूलिप से बचिए, क्योंकि काफ़ी बार यूलिप बेचा जाता है म्यूचुअल फंड के नाम पर, ये ऐसा दिखाया जाता है कि ये म्यूचुअल फंड है, उससे आप ज़रूर बचें।
आ नेक्स्ट कॉलर फ्रॉम बेंगलुरु, सुब्रोतो। सुब्रोतो जी, अपना सवाल पूछिए।
Good evening to Market Mantra team.
Good evening.
I would like to know from the expert, could you please compare ELSS fund with the PPA fund? And if I invest the same amount of money in both the schemes, where I'll get the better return? And suggest me some good ELSS fund, because I want to invest now. Some good ELSS fund. And my next question is, in the first question, one listener has asked about short-term investment. So expert has told about debt fund and ultra short duration fund. And I am telling about if I invest in a treasury bill of 91 days, how it would be. These are my two questions. Thank you.
Sure. So first question, you wanted to get an opinion on ELSS versus PFF, PPF. See, these are two very different investments, although both of them fetch you tax savings under Section 80C. But both of them are very fundamentally different. PPF is an all debt assured return scheme versus ELSS, which is a purely market linked scheme. It invests all your money in equity markets, and therefore your money is subjected to ups and downs with the way markets move. PPF there is no risk. You can consider it as a risk free investment. It comes with a 15 year lock in period. But in ELSS, you take the market risk. It comes only with 3 year lock in. But See, if you look at a long term, if you look at a time horizon as long as 15 years, which is a time horizon of PPF, then it is generally seen that most of the ELSS funds handsomely beat PPF on returns in any 15-year period, despite all the ups and downs that come in between. So if PPF is offering about 7.1% return tax-free, most of the ELSS funds, historically have beaten that rate of return. So if you choose an ELSS fund and on hindsight, your choice turns out to be a poor one, even then, there's a very, very high chance that you would still very comfortably earn better returns than PPF. So from that perspective, yes, for a long-term investment, ELSS has a far superior wealth creation potential. And I would recommend you to go for that, provided you can withstand the ups and downs. You won't lose your sleep if the markets were to fall 15-20%, and you are open to remaining invested for 5-7 years or more.
कैनबे इनके ट्रेजरी बिल में अगर हम कर दें अगर शॉर्ट टर्म की वजह
या सो यस दैट इज आल्सो वायबल थ्रू आरबीआई डायरेक्ट आई थिंक दैट माइट बी पॉसिबल बट यू नो सिंपली फॉर द ईज एंड व्हाट हैपेंस इज दैट इन अ म्यूचुअल फंड सेटअप देर आर टू थिंग्स व्हिच गिव यू एन एडवांटेज यू नो इवन विद अ वेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट ऑफ 5,000-10,000 रुपीज यू गेट अ पोर्टफोलियो अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ 25-30-40 बॉन्ड्स और इवन मोर सो इफ यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट ऑन योर ओन यू कैन बाय वन और टू बॉन्ड्स But in a mutual fund, you get an entire portfolio with a very small amount. So by design, you remain very well diversified. That's one. And even mutual funds offer you complete liquidity. You can any day invest and any day redeem. So, you have complete liquidity. And second is that your gains remains tax sheltered till the tax deferred till the time you sell. Normally what happens in bonds is when you get the interest, it is added to your income for that year and taxed, in that same year. But in mutual funds, you only pay tax when you finally redeem your investments. If you keep holding them for 2 or 3 years, you don't have to pay tax till the time you redeem them. And, that brings a little bit extra compounding effort, compounding advantage over those tax sheltered returns. So, I would like to nudge you towards a debt mutual fund, a safe debt mutual fund, which can give you perhaps these advantages.
जी अगले कॉलर हैं मुंबई से अमित अमित स्वागत है आपका सवाल पूछें
थैंक यू सर एक्सपर्ट को नमस्कार टीम को नमस्कार मेरा सवाल है सर मल्टी कैप फंड और हाइब्रिड फंड इसमें डिफरेंस क्या है सर क्योंकि हाइब्रिड फंड गोल्ड सब कैटेगरीज में इन्वेस्ट करते हैं तो मल्टी कैप फंड और मिड कैप तीनों में डिफरेंस क्या थोड़ा बताएंगे प्लीज थैंक यू
जी जैसा आपने बताया हाइब्रिड फंड्स अक्रॉस एसेट क्लास इन्वेस्ट करते हैं सो एट द वेरी लीस्ट हाइब्रिड फंड्स में इक्विटी और डेट होता है और वो अलग अलग टाइप के फंड पर डिपेंड करता है कि कितनी मात्रा में इक्विटी होगा कितनी मात्रा में डेट होगा आप मानिए आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड लेते हैं तो उसमें करीब 25% इक्विटी 75% डेट होगा वहीं एग्रेसिव हाइब्रिड में उल्टा होता है 75% इक्विटी और 25% डेट होता है एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स होते हैं जिनमें इक्विटी और डेट के अलावा गोल्ड या सिल्वर भी एडेड रहता है तो हाइब्रिड फंड्स की कुछ वैरायटीज हैं जिसमें आपको डिफरेंट एसेट क्लासेस का एक कॉम्बिनेशन मिलता है मल्टी कैप फंड्स जो आपने बताया ये प्योर इक्विटी फंड्स हैं ये आपका सारा पैसा इक्विटी मार्केट्स में निवेश करते हैं लेकिन इनका मैंडेट होता है कि ये कम से कम 25% आपका पैसा लार्ज कैप मिड कैप और स्मॉल कैप में जरूर लगाएंगे तो आप किसी भी मल्टी कैप फंड में करीब मिनिमम 25% एलोकेशन इन तीनों ही मार्केट सेगमेंट्स में होगा जो आखिरी 25% बचा वो फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो लार्ज कैप में लगाना चाहते हैं या मिड कैप में या स्मॉल कैप में या किस तरह वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आपको मल्टी कैप फंड में प्योर इक्विटी एक्सपोजर मिलता है लेकिन एक मार्केट वाइड एक्सपोजर मिलता है एक ही फंड में तो ये एक मेन डिफरेंस है बाकी इक्विटी में भी डिफरेंट टाइप के फंड्स हैं आपने जैसे मिड कैप फंड बोला बाय डिजाइन आप बाय डेफिनेशन बाय नेम वो फंड्स आपका मैक्सिमम सारा पैसा मिड कैप सेगमेंट में लगाते हैं स्मॉल कैप फंड स्मॉल कैप में लगाते हैं मल्टी कैप फंड अक्रॉस मार्केट लगाते हैं
औरंगाबाद से प्रकाश जी जुड़ चुके हैं प्रकाश जी अपना सवाल पूछिए
हेलो नमस्ते सर मुझे पूछना था मेरे पास में मेरा ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड में और ये मैं आपको 3-4 स्कीम के नाम बता रहा हूँ थोड़ा मुझे बताइए कि इसमें ठीक रहेगा बने रहना कि इससे बाहर निकल जाना ठीक रहेगा सर आवाज आ रही आपको
जी बताएं
जी सर देखिए नाम बताता हूँ मैंने आपको म्यूचुअल फंड स्कीम के मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड ग्रोथ
इसमें जो इन्वेस्टमेंट किया था सर अभी तक वो माइनस में चल रहा है, अच्छा खासा माइनस चल रहा है 12% करीब। तो मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड, दूसरा है HSBC स्मॉल कैप फंड, और एक है DSP इंडिया टाइगर फंड, तो ये और एक व्हाइट ऑफ कैपिटल मल्टी कैप फंड। तो ये चार इसकी में सर, इसमें मैंने कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट किया है बट वो क्या है माइनस में चला जा रहा है और अच्छा खासा माइनस है, 10-12% माइनस में चल रहा है, जबकि अभी एक और फंड मेरा इन्वेस्टमेंट है उसमें प्लस में आ गया, वो है मिराई एसेट वाला फंड एक है, उसमें प्लस में आ चुका है, बाकी ये अभी तक माइनस में चल रहे हैं और 10-12% माइनस में है।
ये कितने समय से आप निवेशित हैं?
मिड कैप फंड, HSBC स्मॉल कैप फंड, DSP इंडिया टाइगर फंड और व्हाइट ऑफ कैपिटल मल्टी कैप फंड।
ये कितने समय से निवेशित हैं आप
इसमें? बताइए सर कि इसमें बने रहना ठीक है कि इससे निकल जाना, बाहर निकल करके किसी दूसरे में लगाना ठीक रहेगा?
जी देखिए, आपके जो फंड्स हैं मोतीलाल आर्जन मिड, HSBC स्मॉल कैप, वाइट ओप, ये सारे फंड ठीक ठाक है। मतलब देखिए वो डिपेंड करता है आपका लॉस है, शायद आपने बहुत हाल फिलहाल में लगाया होगा तो वो जो आपने लॉस देख रहे हैं, अगर आपने बहुत हाल फिलहाल में लगाया, देखिए कि एक वो मार्केट वाइड फिनोमेना है, पूरा इक्विटी मार्केट ही गिरा हुआ है तो सारे ही फंड इस वक्त डाउन है। अगर आप पिछले 3 से 6 महीने देखेंगे तो सारे ही म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न, सारे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न नेगेटिव हैं, तो एक वो मार्केट वाइड फिनोमेना है। लेकिन अगर आप मोतीलाल लार्ज एंड मिड की मैं बात करूं तो पिछला एक साल अदरवाइज फंड के लिए काफी बढ़िया रहा है, टॉप 5 फंड्स में अपनी कैटेगरी में वो आता है। इसी तरह वाइट ओक मल्टी कैप थोड़ा नया फंड है लेकिन उसने काफी बढ़िया से परफॉर्म किया है पिछले एक साल में, वो भी टॉप 5 में आता है अपनी मल्टी कैप कैटेगरी में। तो ये निवेश आपके बुरे नहीं है, आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। मार्केट जैसे बताया कि आपको लंबे समय के लिए अगर आप टिके रहेंगे तो आपको शायद लाभ जरूर होगा, लेकिन अभी ऐसा कुछ इन फंड्स में नहीं है कि आप बेचें। हाँ, DSP टाइगर एक ऐसा फंड है जो थोड़ा उसका इन्वेस्टमेंट मैंडेट नैरो है, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनीज में इन्वेस्ट करने वाला फंड है। तो इस टाइप के फंड आमतौर पर देखा जाता है कि जिस भी सेक्टर या थीम में ये इन्वेस्ट करते हैं जब वो चलता है तो वो ये बहुत बढ़िया रिटर्न देते हैं, लेकिन जब वो सेक्टर या थीम अंडर परफॉर्म करता है तो ये काफ़ी निराशाजनक भी हो सकते हैं। तो आप हमेशा ये एक्सपेक्ट करिए कि ये फंड शायद बाकी से ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगा, लेकिन आपको अगर आप उस वॉलेटिलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, वो जो थोड़ा एडिशनल रिस्क इन फंड्स के साथ आता है DSP टाइगर जैसे फंड के साथ, अगर आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं तो आप इसमें भी बने रह सकते हैं। आप इनको लंबे समय का निवेश मानकर चलिए और इनमें बने रहिए।
जी अगली खबर पर नज़र डालते हैं। विदेशी निवेशकों ने पिछले हफ्ते देश के शेयर बाजारों में लगभग 8,500 करोड़ रुपए का निवेश किया। इससे पहले कुछ समय तक उन्होंने शेयर बाजार पर बिकवाली का दबाव बनाया हुआ था। भारतीय बाजार के प्रति निवेशकों का आत्मविश्वास बढ़ा है, साथ ही अर्थव्यवस्था के मजबूत होने, अमेरिकी डॉलर के कमजोर होने और वैश्विक व्यापार में चल रही उथल पुथल से कुछ हद तक सुरक्षित रहने के कारण भी विदेशी निवेशकों का भारतीय बाजार पर भरोसा बढ़ा है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक बीते हफ्ते के 3 कारोबारी दिनों में से 2 में विदेशी निवेशकों ने कुल मिलाकर 10,824 करोड़ रुपए का निवेश किया, जबकि एक दिन यानी 15 अप्रैल को 2,352 करोड़ रुपए निकाल लिए। इस तरह उन्होंने भारत के शेयर बाजारों में कुल 8,472 करोड़ रुपए का निवेश किया।
After rallying to log its best week in 4 years, the domestic markets are expected to focus on the next set of March quarter earnings for fiscal 2024-25, minutes of RBI's Monetary Policy Committee meeting, global tariff announcements and foreign institutional investors' data for direction in the fourth week of April. On domestic front, many major companies are set to release their quarterly and full year financial year 2025 earnings next week. Also, HSBC Manufacturing and Services PMI flash data for April and minutes of RBI's Monetary Policy Committee meeting held earlier this month will be released on April 23rd.
चलिए एक और कॉलर इंतजार कर रहे हैं, दिल्ली से कपिल, स्वागत है कपिल, जल्दी से सवाल पूछें।
हाँ जी नमस्कार सर, मैं आकाशवाणी को ये कहना चाहूंगा कि आकाशवाणी के समाचारों में इस सोने गोल्ड का एक बार रेट जरूर बता दिया करें कि गोल्ड काफी उछाल लेता रहता है। तो मेरा सवाल ये है सर से, अभी सर ये कह रहे हैं कि यूलिफ एक फंड होता है तो यूरोप, ये हमारे साथ हो चुका है कि हमने अभी लास्ट मंथ में हमने देखा था कि हम बैंक में गए थे प्राइवेट बैंक में, तो उन्होंने FD के लिए हमें जानकारी लेनी थी, तो उन्होंने हमें यूलिफ जो आप सर बता रहे शायद मैं वही चीज होगी कि आप साल में 2 लाख रुपए दीजिए और 12 साल तक आपको 2 लाख रुपए देना है और फिर 13वें साल में आपको कुछ नहीं देना और हर साल आप हमारे को एक साल से 25 साल तक 83,000 रुपए हमारे अकाउंट में आता रहे।
अपना अनुभव बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यूलिप से बचे, म्यूचुअल फंड्स में आए अगर आपको म्यूचुअल फंड में आना है तो। आज वक्त इतना ही है आशुतोष मार्केट मंत्र बयाने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
जी धन्यवाद।
Listeners, before we wrap up, a reminder of the headlines. India's forex market doubles in last 4 years from $32 billion to $60 billion, says RBI Governor Sanjay Malhotra. Foreign investors infused nearly 8,500 crore rupees in the country's equity markets last week, and domestic markets to focus on next set of quarterly earnings, tariffs announcements and FII data for Qs next week. And that's it in today's edition of Market Mantra. Goodbye. Market Mantra.